نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کے وقت یہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں اور جینا چاہتا تھا، اس وقت مرنا نہیں چاہتا، مگر دنیا میں اس لیے جینا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی عیش و عشرت میں مشغول رہوں، بلکہ تین کاموں کی وجہ سے دنیا میں جینا چاہتا تھا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ حلال الحرام کو صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہے، تو دینی اور شرعی مقصدوں کو ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں لمبا اس لیے دنیا میں رہنا چاہتا تھا تاکہ میں تین کام کر سکوں. پہلا کام یہ کہ گرمی کے دنوں میں روزے رکھ کر پیاس کو برداشت کر سکوں. تو ہمیں بھی روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں تو رمضان المبارک کے علاوہ جو مسنون روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، شوال کے 6 دن کے روزے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد شوال میں 6 دن کے روزے رکھے، کسی بھی وقت شوال میں، بہتر یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کر دے، اس لیے کہ ایک عادت ہوتی ہے روزوں کی، ورنہ کل کل میں پھر رہ جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کے چاہے 29 ڈیز ہو یا 30 ڈیز، ثواب 30 ہی کا ملتا ہے. تو 30 دن یہ ہو گئے اور 6 دن شوال کے، تو یہ 36 ڈیز ہو گئے، اور اللہ کے یہاں ایک نیکی پر 10 کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 360 روزوں کا ثواب ملا. اور لونر کیلنڈر کے اعتبار سے پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال میں 6 دن کے روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد پھر ذوالحجہ کے روزے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. انہی میں 9 دنوں میں عرفہ کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد محرم آتا ہے، تو محرم کے روزے رکھنے چاہیے. آگے جا کر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، تو محرم میں جو ہے، محرم میں وہ محرم کی 10ویں، 11ویں یا 9ویں، 10ویں، 9, 10th آف محرم یا 10, 11th آف محرم، وہ تو ہے ہی، مگر محرم کے ہر دن کے روزے کا ثواب حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہمارے یہاں سے تقریباً ہر اہم مہینے کے بارے میں لیفلیٹ چھپا ہوا ہے، جانے سے پہلے سب لیفلیٹ لے جائیں کہ محرم میں کیا ہے، ذوالحجہ میں کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کریں. اور آج کل تو آپ انٹرنیٹ بہت استعمال کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کے ساتھ سبسکرائب بھی ہو جائیں تاکہ ہر مہینے آپ کو ریمائنڈ کر دیا جائے گی اس مہینے میں یہ ہوتا ہے. تو روزے، اور پھر ایام بیض کے روزے، ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کے 13th، 14th اور 15th کا روزہ، پھر جو ہے ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ، منڈے اور تھرسڈے روزہ. تو یہ اس کے علاوہ بھی رکھنے چاہیے. پہلے لوگ رکھتے تھے روزے، اب روزے نہیں رکھتے لوگ، صرف رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں. روزے اب بہت کم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، تو ایک زمانہ ہم نے دیکھا کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ تقریباً شعبان پورا ہی روزہ رکھتے تھے. ہمارے حافظ باپو صاحب تھے، उनका ये मामूल था हमारे मुफ्ती अय्यूब साहिब के खुसर के, वो रजब में भी बहुत रोज़े रखते थे मगर शाबान तो तकरीबन उनका पूरा होता था रोज़े का, शाबान तकरीबन पूरा और रजब ही से वो शुरू हो जाते थे। तो ये जो पुराने लोग थे सिर्फ हाफिज़े कुरान थे मगर बुज़ुर्गों की सोहबतें उन्होंने उठाई थी, तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में जो एक डिसिप्लिन थी बहुत आला दर्जे की डिसिप्लिन, आजकल जो अहले इल्म है वो भी उनके बराबरी नहीं कर सकते। ये थे हमारे वालिद साहिब थे, हाफिज़ माकड़िया साहिब थे, हाफिज़ इकले, ये सब हुफ्फाज़ थे, हाफिज़ इकलेरिया साहिब थे मरहूम, अल्लाह ताला सबको घरी के रहमत करे, ये सब छोड़ के चले गए हमें। तो ये जो है उलमा भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, ऐसी उनके आमाल थे। तो एक बात ये हुई, दूसरी बात ये कही कि मैं दुनिया में इसलिए जीना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर हालात आए और हालात आए तो मैं उस वक़्त मशक्क़त बर्दाश्त करके मुजाहदा और सब्र करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं। हालात आते हैं, बीमार हो गए हालात, और कोई दुश्मन दुश्मनी कर रहा है हालात, बुरा पड़ोसी है वो परेशान करता रहता है हालात, बहुत किस्म के हालात आते हैं, हासिद हसद कर रहा है हालात, घर में फाका आ गया, कर्ज में डूब गए हालात, तो बहुत सारे हालात आते हैं। कहते दुनिया में इसलिए रहना चाहता हूं, नंबर एक कि गर्मी के दिनों में रोजे रखूं, नंबर दो हालात आए और हालात में मशक्कत को, अब हमारा हाल ये है और हमें हमारा ये हाल बिल्कुल दुरुस्त ही है कि भाई हालात ना आए तो अच्छा है, ये दुरुस्त है। इसलिए मैंने कह दिया कि मैं अगर इस पर नकीर करूं और तनकीद करूं कि हमारी ये हालत है तो कहीं भी दुआ मांगना ना शुरू कर दे कि अल्लाह मेरे ऊपर भी हालात भेज दे। हमारे ऊपर अगर हालात आ जाएं जैसे सहाबा पर आए थे तो शायद हम कुफ्र के शिकार हो जाएं। अल्लाह उनमें सलाहियतें थी तो अल्लाह उन पर हालात भेजता था, हमारे अंदर सलाहियतें नहीं है तो अल्लाह हमें दूसरे तरीके से जन्नत में भेजता है, छोटे छोटे हालात हम पर आते हैं। ये मुसीबतें और तकलीफें जो आती हैं वो अल्लाह हमें जन्नत में भेजने के लिए हालात को भेजते हैं। देखो दुनिया में सैक्रिफाइस के बगैर कोई ऊँचा नहीं बन सकता, तो वो लोग लंबे लंबे रोजे रखते थे, जिहाद में निकलते थे, अपनी जान कुर्बान करते थे, ये करते थे वो करते थे, फ़क्र बर्दाश्त करते थे। अब हम कुछ ही ना करें तो फिर उनके मकाम पर कैसे पहुँचेंगे? तो अल्लाह हमें भी थोड़े कुछ हालात में मुब्तला करते हैं, तो हालात। और तीसरी बात क्या फरमाई, इसलिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ ताकि उलमा की मजलिसों में बैठूँ। ये बहुत गौर करने की है चीज़, खुद इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुआद इब्ने जबल मेरे सहाबा में सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये दूसरे उलमा के पास जाकर बैठा करते थे और कह ये रहे हैं कि दुनिया में जिंदा रहना इसलिए चाहता हूं कि ताकि मैं उलमा की मजलिसों में बैठ सकूं, उलमा की सोहबतों में बैठ सकूं। जब मुआद इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ये फरमा रहे हैं कि जिंदा रहने का मकसद सिर्फ तीन, उनमें से एक उलमा की सोहबत, तो हम जाहिलों को और जिनके पास हम इल्म नहीं, अहले इल्म की कितनी कदर करनी चाहिए, बड़े आलिम को छोटे आलिम की बात भी सुननी चाहिए और सुनते हैं, बड़े उलमा भी छोटे की बात सुनते हैं, इसलिए कि हर एक के पास कोई ना कोई नई चीज होती है जो मिल जाती है। उलमा इल्म रखते हैं, इल्म के बगैर, नॉलेज के बगैर आदमी, आप लंदन जाना चाहते हैं तो लंदन के रास्ते का नॉलेज न हो तो आप कैसे चलेंगे? तो आप जो है वो दो बातों में से एक बात करेंगे, लंदन जाना हो तो दो बातों में से एक बात करेंगे, आपको रास्ता मालूम नहीं तो या तो आप अपने साथ किसी ऐसे शख्स को ले लेंगे जो रास्ता जानता है कि प्लीज कम विद मी, आई डोंट नो द वे टू लंदन, ताकि वो रास्ता दिखे। और दूसरा ये कि अगर कोई आने के लिए तैयार ना हो तो किसी से अच्छी तरह सीखेंगे कि क्या कौन सा रूट लेना है, कौन सी एग्जिट लेनी है, किस तरह जाना है। तो किसी आलिम को साथ लेना पड़ेगा या उसकी सोहबत में बैठकर रास्ता मालूम करना पड़ेगा और फिर आप लंदन चलेंगे। लंदन का रास्ता मालूम न हो तो आदमी किसी साथी के बगैर या रास्ता मालूम किए बगैर कभी नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो ठोकरें खाएगा, बजाय लंदन पहुंचने के बोल्टन पहुंच सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि हम तो नेविगेटर के साथ चले जाते हैं, वो भी तो साथी ही है, वो भी तो गाइड ही है ना, नेविगेटर, मैप लेकर जाते हैं, वो भी तो गाइड ही है जी। और अगर कुछ ना ले जावे और साइंस को देख कर जाए, वो भी तो गाइड ही है ना। किसी भी रास्ते को तय करने के लिए गाइडेंस जरूरी, और ये गाइडेंस मिलता है उलमा के पास, उलमा के पास गाइडेंस मिलता है। तो उलमा से पूछ पूछ कर जाना चाहिए। देखो जिन लोगों के पास मैप होते हैं, मैप, तो वो मैप से उतना जल्दी नहीं पहुंच पाते जितना किसी को पूछ कर। हम भी पहले पुराने जमाने में लंदन जाते थे, बच्चे थे, दूसरों की गाड़ी में बैठकर तो थक जाते थे, इससे कि इस राउंड अबाउट पर ये एग्जिट मिस हो गई और यहाँ ये हो गया और यहाँ वो हो गया, मोबाइल का जमाना नहीं था, पुलिस को पूछते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, कितने घंटों के बाद पहुंचते हैं। लेकिन अगर किसी को पूछ लिया जो जाकर आया है और वो अपना नक्शा बना करके देता है, तो वो उस मैप से भी ज्यादा अच्छा होता है, इससे कि वो अपने तजर्बे से बताता है। तो उलमा की मजलिसों में भाई बैठा करो, उलमा के पास बैठा करो। और अगर कोई साथ ही बैठ जाए जिसने रास्ता देखा है, तो ये पीरी मुरीदी यही है कि शेख को अपनी गाड़ी हमें बिठा लेते हैं, हम शेख की गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसलिए कोई एवरी रास्ते के ऊपर हर जगह पर वो साथ रहता है कि यहाँ राइट टर्न है और यहाँ लेफ्ट टर्न है, तो चलता रहे आज। तो भाई उलमा के पास बैठने में उम्मत में बहुत कोताही हो रही है। उलमा के साथ एसोसिएट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इंटरनेट जो है आलिम नहीं है, इंटरनेट से जो लोग इल्म हासिल करते हैं उनके गुमराह हो जाने का फियर है, अंदेशा है कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कि जब आदमी को पता ना हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो ये आलिम बन जाओ पहले। आलिम बनने के बाद इंटरनेट पर जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ आप खुद। एक्सपर्ट हो जाने के बाद हम आपको मना क्यों करेंगे? इसलिए कि आपको पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मगर जब पता ही नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो हो सकता है कि जो आदमी सही है, अकीदा भी सही है, दीन भी उसका सही है, मगर बोलने में वो स्टाइलिश नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप उसका बयान नहीं सुनेंगे, आपको बोरिंग लगेगा वो। और दूसरा आदमी जिसका अकीदा ठीक नहीं है, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, तो आपको एक बयान अच्छा लगा, दूसरा बयान अच्छा लगा, तीसरा बयान अच्छा लगा, धीरे धीरे जहर जो है वो आपके दिल में उतरता चला जाएगा। एंड बिफोर यू नो, आप अपना अकीदा खो चुके होंगे। इसलिए इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की एडवाइस जो मैं हमेशा सुनाता हूं, इमाम मुस्लिम ने नकल की है, इमाम मुस्लिम ने अपनी हदीस की किताब में लिया है, जिसमें इमाम मुस्लिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नकल की है, मगर ये इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उनकी बात भी नकल की इमाम मुस्लिम ने, हदीसों की जगह पर इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन की बात नकल की। मालूम हुआ कि सिर्फ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इस्तिफादा नहीं किया जा सकता। वो लोग जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा हो और कुरान और हदीस को समझकर उसकी रोशनी में हमें कोई गाइडेंस दे, तो उनके मलफूजात और उनकी बातों से भी इस्तिफादा किया जा सकता है। तो क्या फरमाया इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने, इन हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म जो आप लेते हैं वही दीन है, इल्म ही दीन है, इल्म और दीन सेपरेट नहीं है, इल्म दीन, इल्म उसी पर अमल करेंगे, इल्म दीन है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना कि आप अपना दीन किससे ले रहे हैं, बहुत गौर करके लेना कि कौन है ये। जब तक पता ना हो कि ये है कौन, एक शख्स के बारे में आप सुने कि बहुत अच्छा इलाज करता है, बेहतरीन इलाज करता है, मगर कोई आपको जरा ये कह दे कि मगर मुझे ये मालूम नहीं है कि डॉक्टर है या नहीं, आप जाएंगे उसके पास? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कौन है, आलिम है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आलिम है तो उस्ताद कौन है, किन असातिदा से उसने पढ़ा है, चेन आगे कहां तक पहुंचती है, चेन है भी या नहीं। बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनकी चेन ही नहीं है, वो MBBS होता है, डॉक्टर होता है, खुद की स्टडी करता है और थोड़ी बहुत स्टडी करके फिर पूरे दिन पर हावी होने की कोशिश करता है। दीन के किसी एक शोबे को थोड़ा बहुत स्टडी कर ले और फिर वो दीन की हर फील्ड में। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे, मगर हर जगह पर एथिक्स होती है, एथिक्स, एथिक्स होती है हर जगह पर। आप किसी डॉक्टर को कोई बात पूछे तो वो ये कहता है कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इसके एक्सपर्ट ये डॉक्टर है, इनसे पूछिए। वो राय नहीं देता, उसे मालूम होता है फिर भी वो नहीं देता, कंसल्टेशन नहीं करता वो, कि नहीं ये हमारी फील्ड नहीं है, आप वहां जाइए। एथिक्स होती है, दीन में भी एथिक्स है। आलिम की एक हद है, हदीस पढ़ाने वाले की एक हद है, एक बाउंड्री है, मुफ्ती की एक बाउंड्री है, फिर मुफ्तियों के अंदर ग्रेड्स है, आलिमों के अंदर ग्रेड्स है, मुहद्दिसीन में ग्रेड्स है, मुफस्सिरीन में ग्रेड्स हैं। तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह कितने बड़े आलिम थे, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, कि उनको मौलाना ज़करिया से लोग इतना नहीं जानते जितना शेखुल हदीस से जानते हैं। नाम उनका शेखुल हदीस ज्यादा फेमस हो गया मोहम्मद ज़करिया से, तो हदीस में कितनी महारत होगी। और उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक की कमेंट्री लिखी, तो मुअत्ता इमाम मालिक की कमेंट्री लिखी तो उसके अंदर जाहिर है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के फिक्ह के सारे ओपिनियंस आते थे, कि एक ओपिनियन ये है, दूसरा ओपिनियन ये है, तीसरा ओपिनियन ये है, क्योंकि इमाम मालिक की किताब है और उसमें हनफी ओपिनियंस भी है, शाफी। तो इमाम उस जब यह किताब छप करके बाहर आई तो मदीना मुनव्वरा या शाम या किसी जगह पर मालिकी मजहब के उस जमाने के सबसे बड़े आलिम, हाईएस्ट अथॉरिटी इन मालिकी फिक्र, उसके हाथ में यह किताब गई। उसने ये किताब पढ़ी तो किताब पढ़कर उसमें इमाम मालिक की फिक्र की जो बातें लिखी हुई थी हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने, उसे पढ़कर उसके दिल में यह ख्याल आया कि ये मालिकी फिक्र का कौन मुझसे बड़ा आलिम है। तो बाद में उनको पता चला कि ये तो हनफी आलिम है, तो उन्होंने ये कमेंट किया उस वक्त कि मालिकी फिक्ह की जुज़ियात मुझे इतनी मालूम नहीं है जितनी इस शख्स को मालूम है। तो शेखुल हदीस को मालिकी फिक्ह पर इतना दस्तरस था तो हनफी मसाइल पर कितना होगा। मगर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के खुतूत को पढ़िए, खुतूत छपे हैं बहुत सारे, तो मुरीद खत लिखता है, तो खत लिखता है तो अपने रूहानी मसाइल और रूहानी मसाइल के साथ कभी कभी फिकही मसला भी पूछ लेता है, नमाज का, रोजे का, जकात का। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह वो पूरे खत का जवाब देते हैं और फिर उसमें खत में ये लिखते हैं कि आपके फिकही मसाइल के जवाबात मजाहिर उलूम सहारनपुर के मुफ्ती साहब की तरफ से आपको आएंगे, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है उनको, मैंने जवाब नहीं लिखे, फिकही ये मेरी बाउंड्री से बाहर है। इतने बड़े आलिम वो लिखते थे कि मैंने तुम्हारे सवालत फॉरवर्ड कर दिए हैं दारुल इफ्ता में, मजाहिर उलूम सहारनपुर के मुफ्ती साहब डायरेक्ट आपको जवाब लिखेंगे। ये क्यों करते थे, इसलिए कि उनमें तकवा था, तकवा उनमें फिक्र आखिरत थी कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर अपने सर पर यह जिम्मेदारी क्यों लूं। और छोटे से एक शोबे दीन के कोई स्टडी करता है, स्टडी करके वो थोड़ा फेमस हो जाता है, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बेकार आदमी भी बहुत फेमस हो जाता है जिसमें कुछ नहीं होता। अब वो फेमस हो जाते हैं तो उसको तलाक का मसला पूछो उसका भी जवाब दे रहा है, हलाल हराम में पूछो उसका भी जवाब दे रहा है, हर चीज पर हावी होने की कोशिश करता है और उसमें से आधे से ज्यादा गलत जवाब होते हैं। जब फिकही महारत ही नहीं है, उसका प्रोफेशन डॉक्टर है तो फिकही महारत कैसे, वो लॉयर है फिकही महारत कैसे होगी। तो इतनी तो अकल रखो कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कितना एक्सपीरियंस उसके पास होगा, आप कहां जाएंगे, लॉयर के पास। और आपको कोई पेट में बीमारी हो गई है, एक लॉयर कितना ही माहिर हकीम हो उसके पास आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप कहेंगे नहीं डॉक्टर चाहिए मुझे। तो दीन के मामले में ओलमा के पास जाओ, ओलमा अल ओलमा वरसतुल अंबिया, ओलमा अंबिया के वारिस हैं, उनको छोड़कर कहीं और क्यों जाते हो। और डॉक्टर भी कौन सा डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट एनएचएस के तहत काम करता है कंसल्टेंट, अभी हमारा भी एक अपॉइंटमेंट था तो हमें तकलीफ थी। आप हजरत से दरखास्त भी है कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला आफियत के साथ शिफा अता फरमा दे, कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है, अल्लाह शिफा दे दे, और अगर ऑपरेशन है तो मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला आफियत के साथ ऑपरेशन भी करा दे, अभी रमजान मुबारक के बाद बुलाया है। तो जो जिस कंसल्टेंट के पास हमें भेजा गया तो एनएचएस के तहत काम करता है अथॉरिटी पूरी, मगर फिर भी हमने हमारे ताल्लुक वाले दो तीन डॉक्टर्स को कहा कि इसकी प्रोफाइल मालूम करोगे ये डॉक्टर कैसा है। देखा आपने, प्रोफाइल मालूम करो कि डॉक्टर कैसा है, कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने साल से काम कर रहा है, दूसरे डॉक्टर इस फील्ड के इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इंग्लैंड के अंदर इस फील्ड में किस मर्तबे पर ये आता है, इसके अलावा और कौन माहिरीन है ताकि हम उनको जाकर के दिखाएं। तो दुनिया में अगर गलत डॉक्टर के पास चले गए तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 5 साल के बजाय आज मौत वाकई हो जाए, ये होगा मर जाएगा आदमी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन अगर दीन के मामले में गलत आलिम के पास चले गए तो जहन्नम में जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो उसमें क्यों हम केयरफुल नहीं रहते, क्यों हम केयरफुल नहीं रहते। और हमारे ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह के जो उलमा आए हैं और ये मस्जिदों के अंदर इमामत कराते हैं और ये बरी ड्यूसबरी वगैरह के हमारे जो ट्रेडिशनल मदारिस के जो फारिग हैं, तो उनको हम मसला पूछते हैं तो वो कहते हैं कि फुना मुफ्ती साहब को पूछना, वो ये कहते हैं कि आई विल लेट यू नो टुमारो। इनका एहतियात, इस एहतियात को हम क्या समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता। नहीं, ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, वो आपके सवाल को सुनकर समझ लेते हैं कि दिस इज बियॉन्ड माई बाउंड्री। जब हमारी बाउंड्री से बाहर है तो हम इसमें नहीं बोल सकते, वो तो किसी मुफ्ती को पूछकर आपको जो, ये इनका एहतियात है, तकवा है इनका, परहेजगारी है। तो जो जो हर सवाल का जवाब दे दे, हर सवाल का जवाब दे दे, हर आप समझते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेजेबल। और जो एहतियात करे, आखिरत की फिक्र, आपके लिए सही गाइडेंस तलाश करे, दूसरे मुफ्तियों को कॉन्टेक्ट करके आपका आपको गाइडेंस दे कि ये टेलीफोन नंबर लीजिए और फुला मुफ्ती साहब को आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बारे में आपका ख्याल ये है कि ये बेकार है। एक जीपी जो है, जीपी उसकी बाउंड्री से बाहर चीज होती है तो वो आपको हॉस्पिटल में रिफर करेगा तो उसे अच्छा जीपी कहा जाता है। बाउंड्री से बाहर की चीज वही छुरी लेकर आपको काटना शुरू कर दे, आप क्या कहेंगे कि बेकार डॉक्टर है, दूसरों को भी आप कहेंगे कि इसके पास मत जाओ। ये एहतियात है हमारे बुजुर्गों का, एहतियात है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में एक जगह पर प्रोग्राम हुआ था तो उन पर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुम ने गुफ्तगू की थी कि मौलाना अली मियां साहब कितने बड़े आदमी थे, पूरी दुनिया जानती है, अरब अजम सब जानते हैं कि हमारे जमाने के जो बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हमने मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, आलिम भी बहुत बड़े और आमिल भी बहुत बड़े, अमल भी करके उन्होंने दिखाया। और मौत कैसी आई, यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते, यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते और गुस्ल फरमाया, गुस्ल करने के बाद अपनी जगह पर तिलावत करने के लिए बैठे और मामूल ये था कि गुस्ल करते थे जुमा का, उसके बाद सूरे कहफ की तिलावत करते थे और सूरे कहफ की तिलावत करके मस्जिद में जाते थे। खादिम कहता है कि मैंने हजरत के सामने कुरान रखा, कुरान रखा तो सूरे कहफ खोलने के बजाय यासीन शरीफ खोली, इससे कि अंदाजा हो चुका था कि अब मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। गुसल किया, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू लगाई और कहा कि मैं कुरान रखा और खुद खोलकर रखा या हजरत के लिए कि मैं हजरत खोल लेंगे, सूरह कहफ के बजाय यासीन शरीफ। मैं हैरान था कि हजरत तो यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं आज। और पढ़ते पढ़ते इन्नमा तुंज़िर मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबशिरहु बिमग़फिरतिन व अजरिन करीम। अब बशारत सुना दीजिए मग़फिरत की और बहुत प्यारे अजर और रिवॉर्ड की, बस ये आयत पढ़ी और सो गए। बहुत बड़े आदमी, यानी अरब मुल्कों में भी उनको एक्सेप्टेंस था, हुकूमतें उनको बुलाती थी, हुकूमतें कंट्रीज बुलाती थी, कंट्रीज बुलाती थी लेक्चरिंग के लिए, मगर 5-स्टार होटल में नहीं उतरते थे। वो ये कहते थे कि मेरे मुल्क के कुछ मेरे दोस्त आपके मुल्क में रहते हैं, एक्सपैट्रिएट्स जो एक एक कमरे के अंदर 5-5, 6-6 रहते हैं, तो कि मेरे कुछ दोस्त रहते हैं आपके मुल्क में जो आपके मुल्क में काम करने के लिए आए हैं मेरे मुल्क के, तो मेरे ऊपर शेड्यूल भेज दिया जाए कि मुझे किस वक्त कहां लेक्चर करना है, मैं अपने तौर पे पहुंच जाऊंगा। और एयरपोर्ट पे अपने उन दोस्तों को बुलाते थे कि मुझे ले जाना अपने यहां और अपने साथ रखना। किंग फैसल अवार्ड मिला वहां से, सऊदी अरब से एक अवार्ड मिलता है किंग फैसल अवार्ड, تو ملا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی گرام کروایا. حضرت شیخ کو جب پتا چلا کہ کنگ فیصل ایوارڈ جو ہے وہ ملا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو ان کو یہ خطرہ تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ اتنا زہد والا ہے اور دنیا سے اس کو اتنی بے رغبتی ہے کہ یہ منع کر دے گا کہ ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ٹیلی گرام کروایا کہ آپ قبول کر لیجئے اس کو, کچھ مصلحتیں تھیں اس کو قبول کرنے کی کہ آپ اسے قبول کر لیجئے, اس سے کہ عرب علماء جو ہے وہ انڈو پاک کے علماء کی سپیریورٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایک موقع تھا, کہا کہ آپ اسے قبول کر لیجئے. تو حضرت نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی وجہ سے اسے قبول کیا, مگر فنکشن میں خود نہیں گئے, بڑائی موٹائی نہیں تھی, فنکشن میں خود نہیں گئے, اپنی جگہ پہ کسی کو کہا کہ مجھے جا کر کے ریپرزینٹ کرو. اور فنکشن میں پہنچنے سے پہلے حضرت نے خط کے ذریعے ان کو کہا کہ مجھے اتنی لاکھ ریال جو ملنے والی ہے, اتنی لاکھ ریال جو مجھے ملنے والی ہے وہ آپ مجھے نہ دیجئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں اسے ڈونیٹ کرنا ہے. ڈونیٹ کرا دی جلسے میں جانے سے, اپنے ریپرزینٹیٹو کے پہنچنے سے پہلے خط لکھ دیا کہ ہمیں یہ رقم نہ دیجئے, اور ان غریب ملکوں میں ان جگہوں میں ضرورتیں ہیں وہاں آپ تقسیم کیجئے, ان اداروں میں ضرورتیں وہاں تقسیم کیجئے. خود حضرت فرماتے ہیں خود کہ میری جب ایک کتاب چھپی مادہ خسیر العالم بے انحطاط المسلمین, جس کا اردو میں پھر ترجمہ ہوا اسلام کا عروج و زوال, جاتے تھے اور عربوں کے سامنے بولتے تھے نیڈر ہو کر بغیر کسی ڈر کے, ان کے بیانات چھپے, اسمعی یا مصر, اے مصر, اے ایجپٹ میری بات کو سن, اسمعی یا سوریہ, اے سیریا میری بات کو سن, یہ بیانات چھپے حضرت کے, اور بہت کھل کھل کر عربوں کو جھنجھوڑا ہے حضرت نے اور عربوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. تو مسلمانوں کا عروج و زوال, مسلمان بلند کیسے ہوئے اور پھر مسلمان گرے کیسے, بہت اچھی کتاب ہے, یہ پڑھنے جیسی ہے, عربی میں ہے, مادہ خسیر العالم بے انحطاط المسلمین. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری جوانی کا دور تھا, حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس زمانے کے حرم شریف کے سب سے بڑے امام تھے شیخ خیاط. وہ شیخ خیاط خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جمعہ کا, مینا جانے سے پہلے والا جمعہ, کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی چاروں طرف سے, اور کہا کہ شیخ نے خطبے کے دوران یہ کہا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی فرماتے ہیں, اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا کہ میں ہندوستان کے ایک دیہات میں پیدا ہونے والا چھوٹا سا شخص, میری کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ امام حرم پڑھتا ہے اس کتاب کو اور بطور ریفرنس کے اپنے خطبے میں بیان کر رہا ہے. پھر ایک مرتبہ مسجد حرم میں کعبے کی مرمت ہوئی, کعبے کی تجدید ہوئی, اس کا رینوویشن ہوا. رینوویشن ہوا تو جن لوگوں کو اس کی اوپننگ کے لیے دعوت دی تھی اس میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی. تو کعبے کی چابی جو ہے وہ ایک خاندان ہی میں رہتی ہے, شیبی خاندان, بنو شیبہ. یہ کوئی بھی ٹیک اوور کرتا ہے سعودی عرب کو, سب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے, چابی کی ذمہ داری ان کے پاس ہی رہتی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ ذمہ داری دی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ یہ چابی لے لے, ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی. تو بھائی حکمران جو آتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں چابی ہمارے خاندان کو دے دو, لیکن نہیں, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل گئی, کسی حاکم کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے لے. اور کنگ عبداللہ ہو یا کنگ فہد ہو یا کنگ فیصل ہو, کوئی بھی ہو, اسے کعبے میں جانا ہو تو پروٹوکول یہ ہے کہ ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. ان سے جب اجازت ملتی ہے وہ دے دیتے ہیں اجازت کہ بھائی فلاں وقت ٹھیک ہے, مگر وہ کسی کے ساتھ چابی نہیں بھیجتے, وہ خود آ کر کھولتے ہیں تب ہی اندر جا سکتا ہے ورنہ نہیں. اور پروٹوکول یہ ہے کہ ان کے خاندان میں اگر بڑوں میں سے کوئی نہ ہو تو بچہ جا کر کے کھولے گا, مگر جائے گا ان کے خاندان کا آدمی, چابی ان کے ہاتھ میں کسی کو دیتے نہیں ہے. तो हमारे दारुलूम देवबंद के बहुत शुरू के बुजुर्गों में से शाह रफीउद्दीन साहिब थे, शाह रफीउद्दीन साहिब मोहतमिम थे दारुलूम देवबंद के। ये शाह रफीउद्दीन साहिब उनके जमाने का जो शैबी था जिसके हाथ में चाबी थी उसको मिलने के लिए गए मक्का मुकर्रमा में, देखो सोच देखो, और गए और उसको जाकर के कहा कि ये कुरान पाक है और साथ में ये तलवार है, ये इमाम मेहदी को हदिये में दे देना, इमाम मेहदी जब आए तो हदिये में दे देना। तो उसने कहा कि मेरी इमाम मेहदी से क्या मुलाकात होगी, मेरी और तुम्हारी उम्र तो एक जैसी है, अगर तुम्हारी हो जाती तो हमारी हो जाती, हमारी हो जाती तुम्हारी हो जाती, तुम खुद दे देते। तो शाह रफीउद्दीन साहिब ने कहा कि इस दुनिया के जितने खानदान हैं उनमें से हर खानदान कयामत से पहले पहले खत्म हो सकता है सिवाय तुम्हारे खानदान के, तुम्हारा खानदान कभी खत्म नहीं हो सकता, ये सिलसिला चल, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि यह चाबी तुम्हारे खानदान में कयामत तक रहेगी, लिहाजा तुम्हारा खानदान भी कयामत तक रहेगा, और फिर हर खानदान में इर्तिदाद आ सकता है सिवाय तुम्हारे खानदान के, इसी के चाबी तो उसी वक्त रहेगी जब मुसलमान होंगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे खानदान के किसी न किसी इंडिविजुअल की मुलाकात इमाम मेहदी के साथ होगी, और उस वक्त इमाम मेहदी को ये चीजें देने के लिए जरा हाई पोजिशन में होना भी जरूरी है, कोई छोटा मोटा आदमी उन तक पहुंचेगा कैसे? तो कहा हाई पोजिशन में यकीन के साथ कोई रह सकता है तो वो तुम्हारा खानदान, और इमाम मेहदी भी जब आएंगे और बैतुल्ला में दाखिल होंगे तो तुम्हारे खुलने पर ही दाखिल हो सकेंगे। इसलिए तुम्हें ये मैं दे रहा हूं मुसहाफ और साथ में तलवार, और वसीयत के साथ कि हर शख्स आगे पहुंचाता रहे कि इमाम मेहदी के लिए, इमाम मेहदी के लिए, इमाम मेहदी के लिए। तो जब रेनोवेशन के बाद बैतुल्ला में दाखिल होने का वक्त आया, उससे भी हाथ था चाबी, हाथ में चाबी थी, वो यूं करके चाबी अंदर अभी रखने ही वाला था कि फिर रुक गया, रुक गया और रुक करके पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ करके सब लोग जो खड़े थे उनकी तरफ यूं देखने लगा, और देखते देखते किसी को तलाश कर रहा था। अब अरबी हैं, अजमी हैं, बादशाह हैं, बड़े बड़े लोग वहां अरब कंट्रीज के सब बड़े बड़े उलमा, और तलाश करते करते नजर पड़ी उसकी हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह पर। तो उसने कहा कि शेख अबुल हसन अली नदवी ताल आगे आओ, और हाथ में चाबी दी और कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि रेनोवेशन के बाद इफ्तिता आपके हाथों से हो। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया अपनी आप बीती कारवां ने जिंदगी में लिखी है, आंखों से आंसू बह पड़ते हैं जब उसे पढ़ते हैं, जिस तवाजु से उन्होंने उसका जिक्र किया है, जिस कसम पुरसी से, प्राइड बिल्कुल नहीं, इतनी तवाजु से उसका जिक्र किया है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि इतना बड़ा एजाज अल्लाह देते हैं फिर भी ये शख्स कितना अपने आप को हकीर समझता है और टूटा हुआ समझता है। और फिर इंतकाल हुआ, इंतकाल हुआ तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुअज्जिन ने ऐलान किया कि शेख अबुल हसन अली अन्नदवी का इंडिया में इंतकाल हो गया है, अभी नमाज जनाजा यहां हरम में होगी। कितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया, ये अल्लाह ने दिलों में बांट डाली। और इंतकाल हो गया था 21, 22 या 23 रमजान को, अखीरी अशरे के बिल्कुल शुरू में, और वहां जब वहां मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में हमारे जो देवबंदी साथी उन्होंने ये किस्सा सुनाया, तो कुछ लोग थे जो पसंद नहीं करते थे कि किसी देवबंदी आलिम की नमाज जनाजा हरमैन शरीफेन में हो, उनका तो कोई हुकूमती पोजीशन भी नहीं था, वो तो आम आलिम की तरह रहते थे, तो वो चाहते नहीं थे, इससे कि अगर ऐलान होगा ऐलान तो बहुत इज्जत होगी उलमाए देवबंद की, लोग भी पूछेंगे कि ये कौन है भाई, और पूरी अरब दुनिया जानती है शेख अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को, और वो लोग इसमें बहुत ज्यादा घबरा रहे थे जो किताबें छाप रहे थे सऊदी अरब में कि शेख अबुल हसन अली नदवी भी काफिर है। अब उन्हें घबराहट हो रही थी कि काफिर की नमाज जनाजा हरमैन शरीफेन में होगी तो हमारी किताब का क्या होगा। बहुत कोशिश की उन्होंने कि नमाज जनाजा न हो, मगर ये अल्लाह की तरफ से तकवीन अम्र हुआ कि एक जमात कोशिश कर रही थी कि हो, इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर था, اور دوسری جماعت کوشش کر رہی تھی کہ نہ ہو ہو نہ ہو ہو نہ ہو. ایک نماز گزر گئی, دوسری نماز گزر گئی, تیسری نماز گزر گئی, چوتھی نماز گزر گئی, پانچویں نماز گزر گئی, چھٹی نمازیں گزرتی رہی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جھگڑا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, یہاں تک کہ یہ بات چلی گئی کنگ کے پاس. تو بادشاہ کنگ فہد نے وہاں سے حکم نامہ جاری کیا, شاہی حکم نامہ, رویل حکم نامہ, کہ ابو الحسن علی الندوی کی نماز جنازہ مسجد نبی میں بھی ہونی چاہیے اور حرم شریف میں بھی ہونی چاہیے. اور یہ حکم نامہ کب پہنچا؟ مغرب اور عشاء کے درمیان, اور عشاء کی نماز کے بعد ختم قرآن تھا دونوں جگہ پر. اگر پہلے ہو جاتی تو کم مجمع میں ہو جاتی. ان سے لڑائی کروائی اللہ نے, تاخیر ہوتی رہی تاخیر ہوتی رہی, حکم نامہ آیا اور نماز جنازہ ہوئی ختم قرآن کے مجمع میں وہاں. اور ہمارے جو دیوبندی علماء وہاں موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی ایک ہندی عالم ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی ابھی نماز جنازہ ہوگی, چونکہ امام احمد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے, تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زارو قطار رو رہے تھے اور ہماری گردنیں اونچی ہو گئی فخر کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے ایک عالم کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی. بہت بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو فقہ میں, مسئلے مسائل میں کچھ کم بصیرت حاصل نہیں تھی, فقہ میں بھی بہت اونچے تھے, مگر مفتی تقی صاحب نے کہا مگر آپ ان کی کتابوں میں ان کے بیانات میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کسی فقہی مسئلے میں مداخلت کی ہو. وہ انہوں نے کہا کہ یہ مفتیوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. تو اس کی وجہ سے ایسا سمجھ لینا کہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو فقہی علم نہیں تھا, مسئلے مسائل نہیں جانتے تھے, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ احتیاط ان کا, تقوی اعلیٰ درجے کا. تو بات ذرا دور چلی گئی, مگر بہت اہم بات ہے یہ, بہت اہم بات. اور میں جہاں کہیں موقع ملتا ہوں کہ تو خاص طور پہ اسپیشلی ٹو مائی ینگ فرینڈ, علماء کے ساتھ کانٹیکٹ کرو, علماء کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے علم حاصل کرو. اور جب تک معلوم نہ ہو, جب تک معلوم نہ ہو کہ اس عالم کی سند کیا ہے, چین کیا ہے, چین غلط ہے تو علم غلط, چین غلط تو علم غلط, علم غلط تو دین غلط. چین ہے ہی نہیں تو اس علم کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ایک آدمی خود سیلف سٹڈی خود پڑھتا ہے, سیلف سٹڈی, ایک شخص کو عربی نہیں آتی, عربی زبان نہیں آتی, وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو عربی میں سمجھ نہیں سکتا, حدیث پڑھتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا. تو جب وہ حدیث کے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتا, قرآن کے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتا, وہ شروحات اور کامنٹریز کو کیا سمجھے گا؟ مگر نہیں, اچھا بولتا ہے, ٹی وی پہ آتا ہے, یوٹیوب پہ آتا ہے, بس ہو گئے پاگل, لٹو ہو جاتے ہیں لٹو. اس لیے بھائی دین کے معاملے میں احتیاط, دین کے معاملے میں احتیاط. All that glitters is not gold, old is gold. یہ دو باتیں میں نوجوان کے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ماڈرن چیز پسند ہے تو چلو ماڈرن دلیل لاتے ہیں, انگریزی کی ہے نا دونوں کہاوتیں, All that glitters is not gold. چلو حدیث کو چھوڑ دو, قرآن کو چھوڑ دو, تمہاری پسند کی چیز ہم پیش کرتے ہیں. All that glitters is not gold, old is gold. اب لوگ ذرا ماڈرنزم چاہتے ہیں, ماڈرن سٹائل چاہتے ہیں, ذرا پروجیکٹر ہو, ذرا ویڈیو فلمنگ ہو رہا ہو تو کہ ہاں یہ کچھ ایڈوانس مولانا لگتے ہیں, اور اس طرف دل جاتا ہے کہ ہاں ہی نوز ہز سٹف. اور وہ جو ٹریڈیشنل انداز میں اقرب الی السنہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ مسکین ہے, فقیر ہے, ایسا نہیں. اپنے علماء جن کو ہم جانتے ہیں, بچپن سے ہم جانتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ان کو جانتے ہیں, ہمارے گرانڈ پیرنٹس ان کو جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کس مدرسے میں پڑھا ہے, ان کے استاد کون ہیں, ان استاد کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے. جیسے ہم اکیڈمک سرکلز میں, اور اکثر جو اکیڈمک سرکلز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ ہاں بھائی مولانا اسلام علیہ سے بہت نیک آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے, جامعہ حسینیہ میں پڑھاتے تھے, اس سے پہلے جامعہ امینیہ میں پڑھاتے تھے, اور انہوں نے بخاری شریف جو ہے پڑھی ہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب سے. دیکھو سب اطمینان ہو گیا. اچھا بھائی مفتی کفایت اللہ صاحب وہ کون ہے؟ کیونکہ پورے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے, پوری دنیا ان کو جانتی ہے, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ. اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ الہند سے. او ہو ہو شیخ الہند پوری دنیا جانتی ہے ان کو. شیخ الہند نے کس سے پڑھی ہے؟ کیونکہ شیخ الہند نے بخاری شریف پڑھی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ماشاء اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے پڑھی ہے؟ تو دیکھو یہ چل رہی ہے نا آگے سند, جی چل رہی ہے نا سند. تو یہ سند, اور سند میں ہر شخص ویل نون ہوتا ہے. سند سند کے بغیر نہیں, یہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم یہ کہیں کہ ہم نے ترمذی شریف پڑھی حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے, پورا مجمع جانتا ہے کہ کون ہے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب, سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کہیں کہ ابو داؤد شریف ہم نے حضرت مولانا ہاشم صاحب سے پڑھی ہے, پورا مجمع جانتا ہے مولانا ہاشم صاحب کون ہے. تو جن لوگوں کے بارے میں آپ کے امام وغیرہ, نارملی ہوتا یہ ہے کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں وہاں جو امام ہوتا ہے مدرس ہوتا ہے وہ آپ کے شہر ہی بچپن سے آپ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہاں آئی ریمبر ہم گوئنگ ٹو دارالعلوم, آئی ریمبر ہم اسٹڈیگ ان دارالعلوم, اینڈ ہی از ریٹرنڈ آفٹر 10 ایئرز. یس ہی ہیز اسٹڈیڈ ایٹ دارالعلوم بری الحمدللہ. سند چاہیے, سند. سند کے بغیر تو محدثین بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے. سند, اور سند کے بغیر کسی جگہ پر قبول نہیں ہو سکتا. اگر سند کی ضرورت نہ ہوتی تو سرٹیفکیٹ کیوں دیا جاتا؟ یہ بھی تو سند ہی ہے نا کہ میرے پاس لیسٹر یونیورسٹی کی سند ہے. اب یہ چین کیسے ہو گئی؟ لیسٹر یونیورسٹی کی سند ہے تو مجھے ایسے آدمی ہی نے پڑھایا ہوگا جس کے پاس سند ہوگی, اس سے کہ اس کے پاس اگر معتبر سند نہ ہوتی تو لیسٹر یونیورسٹی اسے امپلوئی نہ کر دی. اور اس کے پاس بھی اگر سند ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی ایسے ادارے میں پڑھا ہوگا جہاں سند ہوگی. سند کے بغیر تو کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا. سب سے پہلے سرٹیفکیٹ, پلیز شو می یور سرٹیفکیٹ. تو ایک بات تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو, علماء سے تعلق رکھو. جی علماء سے اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو آپ آدھے مولوی ہو جائیں گے اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل میں, اور احتیاط آپ کی زندگی میں آ جائے گا, بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. اور جب ایک سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس میں ایزی بھی بہت, کنفیوژن بالکل نہیں رہتا. جو لوگ ایک جگہ مربوط نہیں ہوتے ان کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے, ایک اوپینین یہ ہے, ایک اوپینین یہ ہے, ایک اوپینین یہ ہے, میں کیا کروں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, خود سوچتا ہے, اور خود سوچتا ہے تو نفس کے اوپینین پر چلتا ہے. اس لیے کہ چار میں سے جو ایزی ہوتا ہے اس کو لے لیتا ہے. تو چار میں سے نفس, وہ نفس کے اوپینین پر چلے گا, اور جو کسی کے ساتھ مربوط ہوگا فون کر کے کہے گا کہ یہاں یہ سچویشن ہے مجھے کیا کرنا ہے, وہ کہے گا کہ ایسا کر لو, ختم ہو گئی بات, کنفیوژن ختم. تو مربوط رہو, علماء کی مجلسوں میں بیٹھو, آپ کے علاقوں کے اندر درس قرآن ہوتا ہو, درس حدیث ہوتا ہو, اس میں بیٹھو, جمعہ سے پہلے والا بیان سنو معتبر علماء کا. کسی جگہ پروگرام ہو, کانفرنس ہو, فنکشن ہو, تو معلوم کرو گے یہ ہمارے علماء ہے یا نہیں. آج کل یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسرے مکاتب فکر اسکول آف تھوٹس والے سب سے پہلے یہ انکوائری کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول آف تھوٹ کا ہے یا نہیں, ورنہ نہیں جاتے. ہم کمزور ہو گئے, ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار, ہر ایک کا بیان سننے کے لیے تیار ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر اتنے غلط لوگوں کے پروگرام آتے ہیں, اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, جس میں غلط غلط چیزیں بیان کی جاتی ہے, غلط غلط فتوے دیے جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی صحابی نے سوال پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے. نبی سید سب سے بڑے نبی, اس وقت مجھے معلوم نہیں. ایسے قصے ہے کہ نہیں کہ جس میں کہا کہ کل آنا, میں کل بتاؤں گا. کل گئے تو پھر بھی کہا کہ اب کل آنا, پھر گئے تو کہا کل آنا. کیوں؟ اس لیے کہ سورس کا انتظار کر رہے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے علماء تو نہیں, اسکالرز جو ٹی وی پہ آتے ہیں اور لائیو کوشچنز لیتے ہیں لائیو, اور آپ کبھی بھی ایک مجھے کوئی لا کر کے دکھائے ایک ویڈیو کلپ کہ جس میں اس نے ایسا کہا ہو کہ دس آئی ڈونٹ نو دا آنسر ٹو دس کوشچن.
वो कितना बड़ा आलिम होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातहुम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड टुडे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स। मगर मैंने उनको भी देखा, मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहिब, बहुत बड़े आलिम, दारुल उलूम देवबंद में शेख उल हदीस पढ़ा, शेख उल हदीस बुखारी पढ़ाते हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत वजन उनका भी। मगर मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे जो पहाड़ है इल्म के, सवाल पूछा जवाब दिया, सवाल पूछा जवाब दिया, सवाल पूछा जवाब दिया, सवाल पूछा जवाब दिया, मगर बड़े मजमे में किसी सवाल पर आए तो कहा कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मैं जब कराची चला जाऊं, मैं जब देवबंद चला जाऊं, बाद में मुझे लिख करके पूछ लेना, या यहां की उलमा को पूछ लेना। बड़े बड़े उलमा, किसी ना किसी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी इल्म है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इल्म, दैट इफ यू डोंट नो यू से आई डोंट नो। इब्ने मसूद रजी अल्लाह उन्होंने भी ये फरमाते हैं कि इफ यू डोंट नो, तो कि भाई नहीं मुझे मालूम नहीं, ये भी इल्म है। क्यों? इसलिए कि जब जवाब मालूम न हो तो ऐसे मौके पर आई डोंट नो मुझे कहना है, ये मसला भी तो मालूम होना चाहिए। इफ आई डोंट नो देन आई हैव टू से आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो इल्म। बट इफ यू नेवर से आई डोंट नो, दैट मीन्स यू डोंट नो दैट, तो ये बेसिक आपको मालूम नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे स्कॉलर्स जो टीवी पे आते हैं और लाइव क्वेश्चंस लेते हैं दीन के बारे में, और फिर वो हकीकत में हदीस तफसीर को जानते भी नहीं है, और किसी जगह पर वो ये नहीं कहते कि आई डोंट नो, किसी जगह पर नहीं, तो आपको जवाब बहुत अच्छे लगते हैं। उलमा को पूछो ना कि वो जवाब किस क्वालिटी के हैं, उलमा को पूछो। हदीस के बारे में पूछा जाता है, बुखारी शरीफ की हदीस के बारे में, कि बुखारी शरीफ में ये हदीस है, इससे इस्लाम पर यह एतराज होता है, जवाब मालूम नहीं होता कि ये फैब्रिकेटेड हदीस है। आपको बहुत अच्छा जवाब लगता है इसलिए आपको पता ही नहीं कि बुखारी शरीफ की हदीस है। वो पूछने वाला बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा है और वहां से जवाब यह मिलता है कि देर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ हदीस, इफ इट इज अ फैब्रिकेटेड हदीस इट हैज नो वैल्यू, इफ इट इज अ ज़ईफ हदीस अगेन इट डज नॉट रियली हैव वैल्यू। तो या तो कह देते हैं कि दिस इज ज़ईफ हदीस, या कह देते हैं कि दिस इज फैब्रिकेटेड हदीस। बस यानी मतलब यह कि जवाब देकर किसी तरह अपनी जान बचानी है, और ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ हदीस, मुझे इसका इल्म नहीं है, माफ कीजिए, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ तफसीर, मुझे माफ कीजिए। हमारे यहां इस्लामिक दावा एकेडमी पर अक्सर लोग मेरे पास ही आते हैं पूछने के लिए, करने के लिए, तो मजमे में लोग देखते हैं कि मुलाकात कर रहा हूं, कोई कुछ सवाल पूछते हैं, तो मैं कहता हूं इनको मुफ्ती साहब के पास ले जाओ, इनको मुफ्ती साहब के, लोगों का ऐसा होता है कि मैं मुफ्ती साहब के पास इसलिए भेज रहा हूं कि अवॉइड करना चाहता हूं, अवॉइड नहीं, हमारी लिमिट है वहां तक, ये हमारी फील्ड नहीं है। मुफ्ती साहब, हालांकि मुफ्ती साहब हमारे शागिर्द हैं, हमसे छोटे हैं, जाओ मुफ्ती साहब के पास जाओ। तो अल्लाह ताला शानो भाई हमें अमल की तौफीक दे। तो दो काम करने के हैं, एक तो ये कि उलमा के पास उठना बैठना, उनसे ताल्लुक रखना, उनके साथ अक्वेंटेंस रखो, और नंबर दो सही उलमा, सही उलमा। और किसी भी किताब को पढ़ो तो ऑथर का नाम देखो, आप नहीं पहचानते तो जब तक किसी आलिम से वेरीफाई ना कराओ मत पढ़ो, इससे कि पूरी किताब बहुत अच्छी होगी। इसलिए कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका जहन जो है वो एक फ्रेम ऑफ माइंड का हो जाता है, इंटेलेक्चुअल स्टाइल, तो इंटेलेक्चुअल हो जाता है, तो कि ये बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट है, बहुत अच्छी तरह लिखी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, इससे कि इंटेलेक्चुअल होता है तो उसे जरा हाई इंग्लिश चाहिए अपनी अंदाज से। तो मैं कहता हूं कि भाई पैकिंग अच्छा हो या ना हो, देखो कि कॉन्टेंट कैसा है, भाई कॉन्टेंट्स को देखो, आजकल तो पैकिंग पर ही दुनिया चलती है ना। ये खुशबुएं जो अभी नई नई निकली है, तो सबसे पहली मरतबा मुझे भी किसी ने एक बॉक्स दिया, पहली मरतबा मेरे, तो वो बॉक्स जब मेरे हाथ में आया तो मेरे दिल में खुशी हुई, खुशी हुई, मैंने कहा कि इतना बड़ा बोटला इसने मुझे दे दिया खुशबू का, तो मैंने कहा मैं छोटी छोटी बोतल कहीं से खाली ले आऊंगा और इसको उसमें भरवा करके दोस्तों के साथ तकसीम करूंगा, ये तो इतनी है, छोटी बोतल आती है तो सबको लगाना पड़ता है, ये तो सबको एक एक शीशी भी दे सकूंगा, रख दी साइड पर। फिर जब वक्त मिला तो खोला, खोला तो अंदर से दूसरा बॉक्स निकला, उसे खोला तो तीसरा पैकिंग निकला, फिर उसे जब खोला उसे, तो वो बॉटल, मैंने कहा चलो जितना बॉक्स था उसका आधा जो है, तो वो उसको बॉटल को देखे, तो देखने के लिए कि खुशबू कैसी है, यूं मैंने रोशनी की तरह, तो तब पता चला कि तो पूरा ग्लास ही है, पर बीच में खुशबू तो वो छोटी बॉटल ही है, उतनी साइज ही की वो खुशबू थी। तो पैकिंग को मत देखो, अंदर क्या है वो देखो, अंदर क्या है वो देखो। तो इसलिए ओलमा के साथ ताल्लुक रखो, अच्छे ओलमा, पूछ पूछ कर कि भाई ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है, और फायदा उठाओ। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह ताला शानहु हमारी हिफाजत फरमाए। भैया देखो, ये सब बातें इसलिए कहता हूँ, और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझसे ताल्लुक जोड़ो, कह रहा हूँ ये बात। ऐसा तो कह नहीं रहा हूँ कि दिस इज द ओनली सेफ प्लेस, बार बार ये कहा कि आप अपनी मस्जिद में, अपने इलाके में, हाँ हमारे पास भी आओ, यहाँ भी आओ। क्यों? इसलिए कि हम भी ग्रीडी हैं, हमें ग्रीड ये है कि हमसे भी कोई बात सुनकर अमल करके जन्नत में जाए तो हमें भी अल्लाह हमसे खुश हों। ये ग्रीड तो सबको होती है, ये अलग बात है कि हर महीने आओ, हर साल 10 दिन के लिए आओ, मगर कोई भी हमारे उलमा पहचाने जाने पहचाने उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फितने हैं, आजमाइशें हैं, ये टीवी वगैरह, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब के मामले में बहुत एहतियात करो। और असल भाई जो इल्म हासिल किया जाता है और असल जो दीन में तरक्की होती है वो आमने सामने बैठकर। वरना अल्लाह ताला शानहु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बोलते और बगैर इंटरनेट सिस्टम के पूरी दुनिया में आवाज जा सकती थी। तो हमें बतलाया कि नहीं, आना पड़ेगा, सामने बैठना पड़ेगा। ये इंटरनेट वगैरह के जरिए किसके लिए कि बेचारा कोई अमेरिका में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है जहां अच्छे उलमा न हो, होता है ऐसा, सही अकीदा उलमा नहीं मिलते तो कह चलो भाई सुन लो। औरतें जो नहीं आ सकती मजमों में वो सुन ले, तो जो मजबूरी के दर्जे में सुनेगा घर में बैठकर उसे इंशाल्लाह बरकतें भी मिलेगी। मगर जो उलमा की सोहबत में जा सकता है, आपकी लोकालिटी में उलमा है या ऐसी जगह पर वो रहते हैं कि आप हफ्ते में, महीने में यू कैन रीच देम, फिर भी आप नहीं जाएंगे और इंटरनेट पर बैठकर सुनते रहेंगे, तो हो सकता है कि इल्म में तो इजाफा हो मगर अमल में तरक्की नहीं होगी। इसलिए कि अमल में तरक्की सोहबत से आती है और समझ भी ज्यादा आमने सामने आती है। तो इसलिए, और दूसरी एक आखिरी बात ये भी कह दूं कि आप सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूं, कम मगर मैं भी करता हूं, जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, वक्त ही नहीं मिलता मगर जाते हैं। हमें कोई कहता है कि सलीम धुरात का बहुत अच्छा बयान आया है यूट्यूब पर, मैं अपनी ही मिसाल ले लूं ताकि किसी की तनकीस ना हो, सलीम धुरात का बहुत अच्छा बयान है, ईद के दिन उसने किया है, यूट्यूब पर इस टाइटल के साथ है। घर गए और इंटरनेट चालू किया, सलीम धुरात के बयान को क्लिक किया और तलाश कर लिया और क्लिक करके चले गए। कितनी मिनट सुनेंगे आप? आप सब सुनते हैं, बताओ मुझे, पूरा बयान कोई सुनता है एक घंटे का? है एक घंटे का बयान कोई? 5-7 मिनट 10 मिनट वो बयान चलेगा कि आपकी नजर तो वो साइड पर है, राइट हैंड साइड पर, दूसरी क्लिक्स के ऊपर, और फिर ख्याल आता है कि चलो आई नो अबाउट दिस, मगर ये क्लिक शायद इट माइट नॉट शो नेक्स्ट टाइम, तो ये सलीम का तो मैं बाद में सुनूंगा, जरा ये देख लेते हैं। चले गए वहां, सलीम धुरात को तो दफन 10 मिनट में कर दिया, चले गए दूसरे के ऊपर। तो और ये जालिम बनाया भी ऐसा है इसको कि पहले जब सलीम धुरात आएगा तो उसके साथ राइट हैंड साइड पर अक्सर देवबंदी उलमा आएंगे और एक आध दो दूसरे होंगे। फिर जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे तो वो देवबंदी उलमा कम होते चले जाएंगे और दूसरे बढ़ते जाएंगे, मगर रहेगा दीन दीन। फिर आप तरक्की करेंगे तो दीन के साथ दुनिया धीरे धीरे आनी शुरू होगी। कैसा बनाया है ये, करके देखिए आप, अगर ये आपको तजर्बा ना हुआ हो तो। फिर जो दुनिया आएगी तो दुनिया में पहले जो है, पहले शुरू में कुछ एजुकेशनल चीजें, दुनिया कोई मेडिसिन की चीज होगी, उसके बाद आएगा ड्रामा और फिल्म, और तरक्की आप करेंगे तो आगे आएगी गंदी चीजें। तो इब्तिदा तो मुझसे की थी, अब इंतहा कहां होती है वो आप जाने, समझे? इसलिए जिन जगहों पर ओलमा हैं, लोग लंदन में रहते हैं, लंदन में अपटन लेन के करीब रहते हैं, इलफोर्ड में रहते हैं, वल्थम स्टोन में रहते हैं, ये लेटन स्टोन में रहते हैं, ये जो इलाके हैं हमारे, इन इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे ओलमा मौजूद हैं। आपको क्या जरूरत है इंटरनेट की? आपको YouTube पे बयान सुनने की क्या जरूरत है? जाओ उनके पास, आपकी जरूरत की सारी चीजें उनकी मजलिस में मिलेगी। ये तो उनके लिए है जो बेचारे मजबूर हैं। कोई किसी शेख से ताल्लुक रखता है, वो बहुत दूर रहता है, शेख की मजलिस में नहीं आ सकता, वो अपने शेख की बात सुनना चाहता है कि भाई लाइव में सुन लूंगा अपने घर में बैठकर। जरूरत जरूरत के हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुखालिफ नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल अक्सर लोग गलत करते हैं, 90% उसका इस्तेमाल गलत होता है, और जब गलत होता है तो गड़बड़। अल्लाह ताला शानहु भाई मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और मैं भी कभी कभी कुछ ऐसा इस्लामी हादिसा पेश आ जाता है तो घर जाने के बाद ऐसा ख्याल आता है कि चलो हमारे पास आधा घंटा फारिग है तो जरा देख लेते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आज ये हुआ है तो क्या देख लेते हैं। वो आध घंटे के लिए जाते हैं, उठते हैं तो पता चलता है कि 2.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। अच्छा, और उसके बाद फिर मुहासबा करते हैं कि 2 घंटे तक इस एक न्यूज को वो खींचता चला गया, यहां क्लिक किया तसल्ली नहीं हुई कि नो नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, शायद यहां कुछ होगा, वहां भी वही लिखा हुआ, तो यहां और फिर आगे और फिर आगे और फिर आगे, ये वेब खींचता चला जाता है। जैसे वो मच्छर जितनी ज्यादा हरकत करता है उतना ही ज्यादा फंसता चला जाता है, इसीलिए तो इसको वेबसाइट कहते हैं, वो फंसता चला जाता है। और फिर मुहासबा करते हैं कि 2.5 आवर्स एक मुस्लिम खबर की वजह से उम्मत की फिक्र में हम गए थे, क्या मिला 2.5 आवर्स में, क्या न्यूज मिला? मस्जिद में 2-4 साथियों ने बताया कि आज पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, उस पर क्या क्या न्यूज में क्या इंक्रीज हुआ, क्या इजाफा हुआ? अगर ये न देखते तो क्या फर्क पड़ जाता? कुछ भी नहीं, जवाब मिलता है कि 0। इतना फर्क होता है कि भाई साथी कहते हैं कि आज बम फटा पाकिस्तान में और बहुत लोग मर गए, तो उसमें पता चलेगा कि भाई 90 आदमी मर गए, और इसके अलावा क्या मिलता है? कुछ नहीं। वक्त इसकी बजाय जब पता चला कि भाई पाकिस्तान में बम फटा है, घर जाते, वुजू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, कुछ दुरूद पढ़ते, इस्तिगफार करते और पाकिस्तान के लिए दुआ करते, तो कितना फायदा होता है? पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि फायदा होता दुआ कबूल हो जाती तो, और दुआ कबूल ना होती और पाकिस्तान को, मुझे तो फायदा होता इबादत करने का। ये चीजें जो है हमारे वक्त को जाये करने वाले, मोबाइल है, टेक्स्ट मैसेजेस, ट्विटर, ये बहुत वक्त जाये होता है उम्मत का इसके ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि हम सोशल नेटवर्क के मुखालिफ नहीं है, मगर सोशल नेटवर्क में नुकसान उम्मत ज्यादा उठा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जरूरत न हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। अल्लाह ताला शानहु हम सब को अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। भाई उलमा से ताल्लुक कौन रखेगा ये बताओ। बस ठीक, ताल्लुक रखो, और देने वाले ताल्लुक से दो भी उलमा को, उलमा की खिदमत भी करो, ये भी जरूरी है, उलमा की खिदमत भी करो जी। द मोस्ट निगलेक्टेड सेक्टर ऑफ द कम्युनिटी आर दी उलमा, मोस्ट निगलेक्टेड सेक्टर। उनका पे भी बहुत कम से कम पे रखते हैं, सोशल सिक्योरिटी वाले भी इतना स्क्रूटिनाइज नहीं करते जितना कमेटी वाले करते हैं कि अगर इसमें और 5 पाउंड कम किया जा सके तो अच्छा है। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसी मुल्क में हम रहते हैं और प्रोफेशनल्स आते हैं कमेटी में, प्रोफेशनल्स जो अपनी सैलरी को सब देखते हैं पैकेज को कि 30,000-40,000 फ्री कार मिलेगी या नहीं, फ्री ट्रिप मिलेगी या नहीं, और जब इमाम की बारी आती है तो 8,000-7,000-6,000 बेनिफिट मिल जाएगी ना इनको, हुकूमत भी दे देगी ना, लोग हदिया भी तो देते हैं इनको, आप कितने देते हैं हदिया के लोग देंगे, आप कितना हदिया देते हैं अपने इमाम को के लोग देंगे? तो बात उलमा के साथ ये हाल हमारा, फिर उम्मत कैसे तरक्की करेगी? और हमारा ये हाल है, इसी वजह से न्यू जनरेशन जो है आलिम बनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो देखते हैं कि माई फादर डिसग्रेस इज उलमा, माई फादर बाप को देखता है कि दिस इज हाउ माई फादर बिहेव विद दी उलमा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम एन आलिम बिकॉज समबडी एल्स विल डिसग्रेस मी इन द सेम मैनर। और डॉक्टर की इज्जत होती है, डॉक्टर पैसे वाला होता है, डॉक्टर कंफर्टेबल होता है, लॉयर की इज्जत होती है, ऐसा नहीं। तो उलमा को दो, मगर सिर्फ देने का ताल्लुक मत रखो, ज्यादा लेने का ताल्लुक रखो। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उलमा का इकराम भी करते हैं माशाल्लाह, दावत भी खिलाते हैं, पैसे भी देते हैं, हदिया देते हैं, गिफ्ट देते हैं और इकराम करते हैं, अलहमद ये भी अच्छी चीज है, इसका भी फायदा है, मगर देने के साथ लेने का, कि इनके पास जो दौलत है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो पाउंड और नोट है जो आज है कल नहीं है, मगर इनके पास ऐसा इल्म है जो हमेशा के लिए रहेगा। तो ये दुनिया से चले जाए इससे पहले मैं ले लूं इनसे, लेने का ज्यादा ताल्लुक रखो और उलमा के साथ मोहब्बत रखो, इकराम करो, वो हमारे बच्चों को संभालते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी देखो 10 दिन तक आप यहां है, कौन संभाल रहा है आपको, आपको कौन नरिश कौन कर रहा है, उलमा। अगर ये ना पढ़े होते ये सब तो आपको कौन बताता। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين